पूर्व होने वाली जो पांच लब्धि है उसकी हम यहाँ चर्चा शुरू कर रहे हैं। अब हम अपना विषय प्रारंभ करते हैं, उससे पहले कुछ प्रश्न है उस पर चर्चा करें। प्रश्न ऐसा है कि औपशमिक सम्यक दर्शन का काल अंतर्मुहूर्त है, औपशम तो अंतर्मुहूर्त के लिए नहीं होता, फिर उसके बाद किसका उदय आएगा? तो ये चर्चा जो हमारे अंतिम प्रकरण में होगी, क्योंकि औपशम समय जो औपशम समय तो क्या है, वहाँ कौन से कर्मों का किस तरह से उदय होता है, कैसे वो दबे रहते हैं और उसके पश्चात क्या होता है, ये तो विषय आने वाला है। एक बात, उसका समय तो छूटेगा क्या, ये दूसरा प्रश्न है। तो छूट भी सकता है, नहीं भी छूट सकता है, किसका छूटेगा किसका नहीं छूटेगा वो भी यथा समय चर्चा होगी। और कर्मों की अपेक्षा बताइए, ये वो भी सब चर्चा हम बिल्कुल विस्तार से करेंगे और बोर्ड पर भी समझाएंगे। तो जब अपना विषय चलेगा और उसका विषय आ जाएगा तो ये सभी आपके उसमें उत्तर मिलने वाले। दूसरा प्रश्न ऐसा है कि क्षौपशमिक भाव और क्षौपशम सम्यक दर्शन एक ही है क्या? तो हमने देखा तो क्षौपशमिक भाव तो अठारह है, अलग अलग प्रकार के। तो क्षौपशम सम्यक दर्शन ये अठारह में से एक भाव है। क्षौपशमिक भाव में अठारह अलग अलग देखे थे, कौन कौन से? चार ज्ञान, तीन कुज्ञान, ये चार सम्यक ज्ञान और तीन कुज्ञान, ये क्षौपशमिक ज्ञान। तीन दर्शन, क्षौपशमिक सम्यक्त्व, सराग चारित्र और संयमान्वयम और दान लाभ वगैरह, वो पांच। तो ये तो अठारह में से एक है उस क्षौपशम सम्यक दर्शन। तीसरा प्रश्न है क्षौपशम चारित्र कैसे बनता है, क्षौपशमिक चारित्र कैसे बनता है? तो उसमें भी वो सर्वभाती स्फलन तो बने रहते, देशराती का उदय होता है जिसमें संज्वलन के संज्वलन देशघाती प्रकृति है। तो उसमें देशघाती का उदय और सर्वघाती का उदय नहीं होना, इस तरह से वो क्षौपशम चारित्र बनता है। और वो भी किस तरह से वो आगे के गुणस्थाना में बनता है उसकी चर्चा तो यथा समय होगी। हालांकि ये प्रश्न हो गए, अब हमारा विषय आगे बढ़ाते हैं। हिंदी में हम 60 पेज पर आए थे। हमने सम्यक्त्व के तीन प्रकार देखे थे, औपशमिक सम्यक्त्व, क्षौपशमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व, दर्शन मोहनीय और अनंतानुगमनीय। ये जो है वो सम्यक्त्व के बाधक कर्म है। उनका उदय हो तो सम्यक को हुआ हुआ समय यानी जो ऑलरेडी है वो भी गिर जावे उसमें से, और जो अभी मिथ्या को में उसका उदय चलता रहे तो उसका सम्यक तो न हो। तो सम्यक के लिए बाधक कर्म है दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंध। दर्शन मोहनी की मिथ्या तो प्रकृति और जो अनंतानुबंधी है वो सम्यक में बाधक है। सभी दर्शन मोहनीय नहीं कहना क्योंकि सम्यक प्रकृति तो बाधक नहीं है, इसलिए जो सम्यक यानी मिथ्या तो जो है मिथ्या तो प्रकृति और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लो ये सम्यक में बाधक है। रर तो इनका उपशम होगा तो औपशमिक सम्यक तो होगा, इनका क्षोभम होगा, क्षोभम तो ये अनंतानुबंधी का उस रूप से उदय में नहीं आएंगे, वो अन्य अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वगैरह रूप से उदय में आएंगे तो वहां उसमें वो दबे रहेंगे अनंतानुबंधी, और उदय तो अन्य चारित्र मोहिनी का होगा और जो मिथ्यात्व का उदय नहीं होगा, और उदय हो सकता है तो सम्यक प्रकृति का उदय हो सकता है वहां, तो वो तो क्षोभम सम्यक दर्शन है। और क्षायिक सम्यक दर्शन में दर्शन मौर्य और अनंतानुबंधी इनका सत्ता में से पूर्ण नाश हो जाता है, क्षय हो जाता है, तो उसको कहते हैं क्षायिक सम्यक। इस तरह सम्यक के हमने तीन प्रकार देखे। अब यहाँ हम बात आगे बढ़ाएंगे, हिंदी में 7 पेज पर आए हम और गुजराती में 57 पेज पर है। औपशमिक या उपशम सम्यक्त्व के 2 प्रकार है। पहले हमने सम्यक्त्व के 3 प्रकार देखे, औपशमिक शार्वक्षमिक और क्षायिक। अब जो औपशमिक सम्यक दर्शन है उसके 2 प्रकार यहाँ देखने रहे, एक तो प्रथम उपशम सम्यक्त्व और एक है द्वितीय उपशम सम्यक्त्व। पहली बार हुआ हुआ प्रथमोपशम और दूसरी बार हुआ हुआ द्वितीयोपशम ऐसा इसका अर्थ नहीं है ना, क्या नाम से हमें ऐसा लगता है पहली बार हुआ हुआ प्रथमोपशम और दूसरी बार होगा तो द्वितीयोपशम, तो ऐसा इसका अर्थ बिल्कुल नहीं। प्रथमोपशम की बात तो हमने देखी थी, द्वितीयोपशम सम्यक तो किसे और कब होता है उसे अब देखते हैं। हमने दोपहर में बात की थी परंतु इसमें से भी पढ़ेंगे तो और पक्का हो जाएगा। जब 6वें 7वें गुणस्थान वाले मुनिराज पहुंचे जो क्षोभम सम्यक्त्व के धारी है और जो उपशम श्रेणी चढ़ने के अर्थात श्रेणी का अर्थ होता है श्रेणी निश्चित, तो 8वां 9वां 10वां गुणस्थान चढ़ना उसको कहते सीढ़ी यानी श्रेणी चढ़ना, 10वें के बाद 11वां यहाँ उपशम श्रेणी की बात है। तो जो उपशम श्रेणी चढ़ने के अर्थात 8वें 9वें 10वें 11वें गुणस्थान में आरोहण करने के सम्मुख होते हैं यानी उनकी विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, वितरागता उनकी बढ़ती चली जाती है, तो उसको कहते हैं वो श्रेणी में आरोहण किया होना। तब वे 7वें गुणस्थान में क्षोभम सम्यक्त्व में से दोबारा उन कर्मों का उपशम करते हैं यानी दर्शन मोहिनी की तीनों ही प्रकृतियों का वहां उपशम करते हैं। अनंतानुबंधी का उदय तो वहां था ही नहीं, तो वहां दोबारा फिर उपशम करने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि संज्वलन का ही उदय था। अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान मुनियों को तो उदय ही नहीं है, तीन कषाय चौकड़ी का उदय का अभाव है। कर्णानियों में हम उदय का अभाव कहीं, द्रव्यानियों में हम अभाव हो गया कहीं, है ना, सत्ता में पड़े हैं सारी प्रकृतियां परंतु उदय में नहीं आती है। तो उदय में क्षोभम सम्यक दृष्टि के उदय में जो मुनिराज है उनकी बात चल रही है, किसका उदय चल रहा है दर्शन मोहिनी में सम्यक प्रकृति का और चारित्र मोहिनी में संज्वलन। जब ऐसी अवस्था है तो सम्यक प्रकृति की उदय उसके उदय के साथ श्रेणी का पुरुषार्थ नहीं होता क्योंकि श्रेणी चढ़ना है वो विशुद्धि बहुत बढ़ जाती है, तो ऐसे में सम्यक प्रकृति का उदय उसमें वो भी बाधक है, तो वो क्या है उसका भी वहां उपशम हो जाता है यानी दर्शन होने की जो 3 प्रकृतियां है उन तीनों का उपशम हो जाता है और फिर श्रेणी चढ़ने का पुरुषार्थ होता है। चारित्र मुनि में जो बातें बनती है वो अपना यहाँ विषय नहीं है। तो ये जब श्रेणी के पहले जो दोबारा क्षोक्षम में से जो उपशम होता है उसको कहते हैं द्वितीय उपशम, और प्रथमोपशम कब कहते हैं, मिथ्यात्व में से जो उपशम करके सम्यक्त्व प्राप्त करेगा वो प्रथम उपशम, और क्षयोपशम में से जो श्रेणी के पहले दोबारा उपशम करेगा वो द्वितीय उपशम। ख्याल है ये दोनों में डिफरेंस, क्षयोपशम में से जो होता है दोबारा उपशम वो द्वितीय उपशम, वो कौन करते तो मुनिराज करते, और जो मिथ्यात्व में से उपशम करके सम्यक्त्व प्राप्त करेगा वो है प्रथम उपशम। अब हमारी चर्चा तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व की अर्थात मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व प्राप्त करने संबंधी चल रही है, मिला सबको, गुजराती 57 पेज है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व किसे प्राप्त हो सकता है और किसे प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमारा विषय चलेगा प्रथमोपशम सम्यक्त्व, तो कौन सा जीव से प्राप्त कर सकता है उसकी हम यहाँ अभी जानकारी लेने जा रहे हैं। चारों ही गति वाले जीव, यानी सम्यक्त्व कौन से गति वाले जीव को होगा, चारों, मनुष्य हो, तिर्यंच हो, नारकी हो, सातवें नरक का नारकी हो तो भी हो, या देव हो मिथ्या दृष्टि, तो उसको भी सम्यक्त्व, कौन सी वाली चल रही बात अपनी, प्रथमोपशम सम्यक्त्व वे जीव ही प्राप्त कर सकते हैं। अब उसमें भी कौन कौन है लायक जीव उसकी बात करेंगे हम, तो पहले में पहले चारों ही गति वाले जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्व उत्पन्न इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात है वो भव्य होने जरूरी है, तो भव्य क्यों है, कौन से कर्म के कारण वो भव्य है, पारिणामिक भाव, भव्यत्व जो है वो पारिणामिक भाव कहलाता है, यानी जीव की ऐसी ही योग्यता होती है, अनादि अनंत बनी रहती है, अनंत उसके लिए बनाई रहती है, कि जो जब तक वो सिद्ध नहीं होता तब तक उसको भव्य ही कहे, तो वो उसकी ऐसी नेचुरल ऐसी योग्यता है कि वो समय दर्शन प्राप्त करके सिद्ध पर्याय प्रकट करे, ऐसी योग्यता जिन जीवों में पाई जाती है उसको तो कहते हैं भव्य, और जिन जीवों में ऐसी योग्यता ही नहीं होती उसमें किसी भी कर्म का कोई भी लेना देना नहीं है, जीव की ऐसी योग्यता होती है तो उसको कहते हैं अभव्य, और जिसने समय दर्शन प्राप्त किया, मुनि बन गया, अर्यंत हुआ और सिद्धपना प्रकट कर दिया, तो उसने अभी भव्यत्व उनकी अभिव्यक्ति हो गई, अभी उनको भव्य नहीं कहेंगे, सिद्ध हो गए अभी, होने योग्य नहीं कहेंगे, भव्य सिद्ध है ने सिद्ध होने योग्य, जो सिद्ध बन चुका है वो अभी होने योग्य नहीं कहेंगे, तो वो भव्यत्व से तो पार हो गए, अभव्य तो है ही नहीं है परंतु भव्यत्व से भी पार हुए, इसलिए उनको अभी वो सिद्ध बन चुके हैं, अब उनको भव्य नहीं कहेंगे, है ना। तो चारों ही गति वाला भव्य, दूसरी क्या कंडीशन चाहिए, मिथ्या दृष्टि, ये लायका बताए किसकी, प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्त करने वाले प्रोवाइडर वो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक्त्व तो वही प्राप्त करता है जो मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व में जाता है, जो ऑलरेडी सम्यक्त्व है वो तो उपशम में से क्षोक्षम हो सकता है, क्षोक्षम में से क्षायिक हो सकता है, या क्षोक्षम में से दोबारा प्रथम द्वितीयोपशम हो सकता है, पर हमारी बात प्रथमोपशम की चल रही है, तो प्रथमोपशम के लिए कंडीशन क्या है, वो जीव मिथ्या दृष्टि होना चाहिए। तो चारों ही गति वाला भव्य मिथ्या दृष्टि जीव, तो कौन से चारों गति में, तो देव नार के मनुष्य को पंचेंद्रिय है, पंचेंद्रियों में ऑल वैरायटी है, कितनी, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, पंचेंद्रिय, तो इसमें से कौन कौन से जीव समय को प्राप्त कर सकते हैं, तो संघी पंचेंद्रिय, असंघी भी नहीं, संघी पंचेंद्रिय यानी जिसको मन है ऐसे जीव, क्यों ऐसी कंडीशन क्यों, वो बिचारे मन रहित वालों ने क्या किया, तो उनके इतना ज्ञान का उभार नहीं है कि वो उपदेश का ग्रहण करे यानी सुन सके, उस पर विचार कर सके, क्योंकि ये जो सम्यक्त्व की प्राप्ति होने वाली है वो तत्व विचार के द्वारा ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। और उसके तत्व विचार करने के लिए पहले तत्व सुनना भी चाहिए, सुनकर समझना भी चाहिए। असंख्य पंचेंद्रिय सुन तो सकते हैं, परंतु वो वहां मन नहीं है तो उसको धारण नहीं कर सकते और उस पर विचार नहीं कर सकते। विवेक तो उनके पास वैसा मन संबंधी जो ज्ञान का उभार है वैसा उनको ज्ञान का उभार नहीं पाया जाता। इसलिए एकेंद्रिय से लेकर असंगी तक के जीव ये प्रथम ऑप्शन समय को प्राप्त कर ही नहीं सकते। एकमात्र संगी पंचेंद्रिय जीवों में ही ये लायकत है कि वो समय को प्राप्त कर सके। वो पर्याप्त होना जरूरी है। हमने पर्याप्त अपर्याप्त की बात की थी, तो पर्याप्त होने के पश्चात ही जीव प्रथम ऑप्शन समय को प्राप्त कर सकता है। जो लब्धि अपर्याप्त जीव है वे तो प्रथम ऑप्शन समय को प्राप्त करने के तो लायक ही नहीं है। एक बात, क्योंकि उनका आयु कितनी अल्प है, श्वास के 18वें भाग में वो मर जाते हैं, तो उनमें तो कोई चांस ही नहीं है समय को प्रकट करने का। अब जो अन्य जो पर्याप्त जीव है, जब तक पर्याप्ति चलती रहती है तब तक उनको सम्यक्त्व नहीं होगा। देव और नारकियों में एक अंतर्मुहूर्त यानी पर्याप्ति पूरी होने पर एक अंतर्मुहूर्त बीत जाता है, उसके पश्चात वो जीव प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य और तिरियंचों में थोड़ा वेरिएशन है। जो तिरियंच संगी पंचेंद्रिय है पर्याप्त जीव, पर्याप्ति पूरी होने के बाद या जन्म के बाद वो दिवस पृथक्त्व कहते हैं, यानी कुछ दिन पृथक्त्व कहता है बिटवीन 3 to 9, कहीं कहीं बिटवीन 7 to 8 भी कहता है। जहां जो लिखा है वहां उतना समझना। तो उतने दिन के बाद ये प्रथमोक्षम सम्यक्त्व की बात चल रही है, क्षोक्षम की नहीं। उसके जो ड्यूरेशन है वेरिएशन उसकी अलग बात है। तो तिरियंच भी पर्याप्ति पूर्ण होने पर यानी जन्म के बाद यहां तो लेना कि दिवस पृथक्त्व में प्रथमोक्षम सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमारी बात मनुष्यों की, तो 8 वर्ष पूर्ण होने पर वो गर्भ से लेकर वो जन्म जब सहते हैं तो कहीं से जीव आकर जहां वो उत्पन्न होता है तब उसका जन्म कहा जाता है। एक 9 महीने के बाद हॉस्पिटल में जन्म होता है उसको जन्म नहीं कहते। मनुष्य रूप से उसका जो उत्पन्न हुआ ना तभी से उसको गिनते हैं। तो तभी से वो जो 8 वर्ष है तो 8 वर्ष के पश्चात मनुष्य में ऐसी लायकात होती है कि वो प्रथम ऑप्शन सम्यक को प्राप्त करे। इतना ही नहीं, 8 वर्ष के पश्चात तो मुनि होने की भी योग्यता है और 8 वर्ष के पश्चात तो केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। तो इतने छोटे बालक में भी केवल ज्ञान प्रकट करने की योग्यता है। ये पर्याप्त तो होना आवश्यक है। पर्याप्त तो पूर्ण पर्याप्ति पूर्ण होने के पश्चात ही प्रथमोक्षण समय तो उत्पन्न होगा। गर्भज ये जो कंडीशन लिखी है यहाँ गर्भज वाली, वो तो मनुष्य और तिरियंचों के लिए लागू, क्योंकि देव और नारकी तो गर्भज होते ही नहीं। उनका जन्म कैसा होता है उसको क्या नाम है एक विशिष्ट शास्त्र, उपपाद जन्म, यानी उनके जन्म के विशिष्ट स्थान होते हैं वहां उनकी उत्पत्ति होती है। तो उनमें तो ये गर्भज वाली कंडीशन लागू नहीं है। तो ये जो गर्भज वाली जो कंडीशन लिखी है वो किसके लिए है, मनुष्य और तिरियंचों के लिए। इसका अर्थ होता है ऐसा कि जो संगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन तिरियंच है, सम्मूर्छन का अर्थ ऐसा होता है कि वातावरण में से वो पुद्गल परमाणु का ग्रहण करके वहां शरीर की रचना करते, और गर्भज यानी माता और पिता के निमित्त से जो बालक उत्पन्न होते हैं तो उसको कहते हैं गर्भज। गर्भज गर्भज की बात, ये बात आ गया है। तो मनुष्य और तिरियंचों में ये कंडीशन है कि वो गर्भज होना आवश्यक है। हमने तो बहुत बार सुना है स्वामी जी के द्वारा कि स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात मगरमच्छ सम्मूर्छन संगी पंचेंद्रिय जीव 5वें गुणस्थान में सम्मूर्छन संगी पंचेंद्रिय, और यहाँ बात क्या लिखी है गर्भज। ये हमारा कौन से समय तो की बात चल रही है, प्रथम ऑप्शन। वो क्षोभ में दर्शन हो सकता है। समूचन पंचेन्द्रिय तिरियंचों को क्षोभ संगी होना आवश्यक है, हो सकते हो सकता है, परंतु क्षोभ हो सकता है। संगी पंचेन्द्रियों में भी तिरियंचों में समूचन जीव पाए जाते हैं। अब हम आगे चलेंगे इस पर। उसमें भी मंद कषाय रूप विशुद्धता का धाई, जो तीव्र कषायी जीव है उसको तो ये सम्यक तो नहीं होने वाला। सम्यक तो की बात ही छोड़ो, उसको तो विशुद्धि लब्धि भी नहीं है, क्योंकि ये जो हमने पांच लब्धि देखी है तो सम्यक तो होने के पहले ये विशुद्धि लब्धि तो होती ही जीव, तो उसमें उसके कषाय तो मंद होते ही है। कषाय मंद हुए बिना वो देवलाली में क्यों आएगा? यानी कषाय मंद हुए बिना कोई जिनवानी श्रवण के लिए नहीं जाएगा। अब देवलाली में आने की बात में उसे याद आ गया, मैं रीना की बच्चे ने पूछा यहाँ क्या हो रहा है सुबह से शाम तक, तो आप तो प्रवचन ही करते हो और आप ही लेते हो, तो आप सायन में क्यों नहीं लिया? तो यहाँ देवलाली में आकर क्यों लिया? तो हमने तो ऐसा ही निश्चित किया था पहले सायन में लेने का, कि हमारे यहाँ तो सुबह डेढ़ घंटा और शाम को दो ढाई घंटे चलता है, तो हम तो एक कोई भी टाइम नक्की करें तो दूसरी जो बैच वाले हैं उनको वो टाइम सूट नहीं हो। महिलाओं को तो सुबह आना नहीं होता है, शाम को ले तो कोई अन्य जो है सुबह आने वाले उनको शाम का टाइम नहीं सूटेबल। तो हमने ऐसा नक्की किया चलो अभी देवलाली जाएंगे, देवलाली में या गजपंथा जाएंगे और वहां अपना पूरा तीनों ही बैच वाले स्टूडेंट, बैच यानी हम क्लास कहते हो, क्लास यानी कोई वहां वो फ्री वाला क्लास नहीं है, तो जो स्वाध्याय आते हैं तो सबने मिलकर हमने कहीं जाकर पंचलब्धि सीखने का नक्की किया। तो जब पता चला और हमने आपने पूछा था कांति भाई से कि ऐसे ऐसे हम करेंगे तो क्या आपकी इजाजत है, तो उन्होंने बोला नहीं इजाजत नहीं है, एक कंडीशन है कि आपको सामूहिक रूप से इसको चलाना पड़ेगा, ताकि अन्य भी कोई जो उसमें आना चाहते हैं सब लोग उसका लाभ लेंगे। इस प्रकार ये ऐसा ही सोच सोच में ऐसा आयोजित हो गया, यानी बच्चों को भी ऐसा पता चलता है ये साधे की बात करते हैं आप दिन में, तो यहाँ क्यों लिया आपने, वहां क्यों नहीं सिखाया? देखो अभी हमारी ये जो चर्चा चल रही है कि पात्र कौन है, प्रथमोक्षम सम्यक को प्राप्त करने के लिए पात्र कौन है, तो मंद कषाय तक अभी हम आए थे, उसके आगे वाली एक कंडीशन है जागृत होना आवश्यक, क्योंकि हमें ऐसा लगता है, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कल रात को नींद में समय दर्शन हुआ होगा। इस समय दर्शन के बारे में बहुत भ्रांतियां चलती हैं, कोई कहते हाँ हमको ऐसा आकार दिखता है, तो आकार जो दिखे वो क्या हो सकता है? कोई कहते कि हमको ऐसा सफेद सफेद ऐसा लगा, कोई कहते हमें ऐसा लगा हम ऊंचे आकाश में ऐसे कोई उड़ रहे, बाकी सब ये नीचे नीचे है, हाँ एकदम हल्का हल्का लग रहा है। कोई कहते हम संगीत सुन रहे तो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा हमको, आत्मा की अनुभूति हो गई, इतना आनंद आ गया हमको। यानी ये समय व्यसन के बारे में बहुत हमारे दूरे चलते, और हम किसी ना अन्य ही चीज को समय दर्शन मान रहे थे तो हमारी फाइल क्लोज हो गई, क्योंकि गलत चीज को हमने समय दर्शन माना तो अभी सही रास्ता क्यों, अभी उसके प्राप्ति का उपाय क्यों करेगा जी, है ना, उसके बारे में सोचेगा क्यों? तो ऐसे ही कुछ ना कुछ अन्य मति की बातें सुनकर या ऐसे ही कुछ चलता रहता है, और उसके लिए ध्यान के क्लास भी लगते, ध्यान को सिखाना नहीं पड़ता, ये तो हम हर समय करते हैं, हर बार करते हैं, वो मिस्टेक कहाँ है, ध्येय में गड़बड़ है, हम किसका ध्यान कर रहे हैं उसमें गड़बड़ है। ध्यान तो सिखाने की चीज है ही नहीं है, क्योंकि टीवी देखते हैं तो कितना इंतजार करके देखते हैं, बिल्कुल पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। जो अपने रुचि की चीज है, मान लो क्रिकेट मैच चल रही है और हम भोजन के लिए बुला बुला के थक जाते हैं, तो क्या होता है वहां वो ध्यान पूरा, ये बॉल इधर से उधर नहीं जाए बाय चांस कहीं, है ना, तो उसका कितना ध्यान रखते हैं, या अपना छोटा बच्चा है तो उसका हम कितना ध्यान रखते हैं। तो ये ध्यान तो सिखाने की चीज नहीं है, वो सहज होती है, किसका ध्यान करना है, वो ऐसा जो त्रिकाली शुद्ध स्वभाव जो हमारा वो क्या है, उसके संबंध में जो ज्ञान चलता है उसका जब तक हमें सही पता नहीं लगता है, और वो क्या है, वो जिनेन्द्र द्वारा बताया हुआ तत्व तो कैसा है, उसको कैसे जानना, उसका लक्षण क्या है, इसको जब तक हम नहीं जानते हैं और अभिप्राय में जब तक भूले पड़ी रहती है, तब तक कितना भी वो उपयोग को खेचाखानी करो रहने वाला नहीं है। चाहिए ये उपयोग वहां जाए, उसको खींचो और इधर लगाओ, ये अंदर बाहर कुछ नहीं हो सकता। ये तो अभिप्राय में भूल है, अभिप्राय की भूल सुधरेगी, और वो सुधरेगी तो तत्व निर्णय और तत्व विचार द्वारा सुधरेगी। और जब ऐसा होगा और अपने आत्मा की महानता भाषित होती है, तब उपयोग बिना कहे हाँ वो अपने स्वरूप को पकड़ ले, तो वो कुछ करने करने की बात नहीं, वो सब क्रम से आने वाली बात। तो यहाँ तो हमारा क्या चल रहा है कि जागृत अवस्था में सम्यक दर्शन होगा, उसके साध्य में भी नहीं सुना। तो नींद अवस्था में वो क्या तत्व सामने वाले प्रवचन कर रहे वो भी नहीं सुनाई जाएगा, तो वो सम्यक दर्शन की तो बात ही क्या है। अभी साकार ज्ञानोपयोगी जीव, यानी ज्ञानोपयोग में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तत्व विचार में जीव जुड़ जाता है, तत्व विचार करते करते विकल्पात्मक भूमिका से निर्विकल्प अवस्था प्राप्त होती है, वो ज्ञान का ही कार्य चल रहा है। तो ज्ञान यानी ज्ञान को साकार कहते हैं, ज्ञान की जो पर्याय है उसको साकार कहते हैं, और दर्शन की पर्याय को निराकार को अनाकार को। तो आकार यानी वो शेप को उसको आकार नहीं कहते, साकार यानी जैसे ज्ञान साकार हुआ, यानी ज्ञान ने विशेषताएं जाननी, इसको कहते ज्ञान साकार हुआ। जैसे सुगंध आई, फूल की सुगंध, और ज्ञान में वो सुगंध को जाना, तुम क्या कहेंगे ज्ञान सुगंधाकार हुआ। तो सुगंध का कुछ आकार होता है, तो आकार यानी शेप ऐसा नहीं, ज्ञान में वो जानना इसी को साकार हुआ ऐसा कहते हैं, है ना। तो ज्ञान के द्वारा ये जो जानने में आता है, तो ज्ञानोपयोग में ही सम्यक दर्शन होता है। सम्यक्त्व शुरू होने के बाद औक्षम सम्यक्त्व के काल में बाद में वो दर्शनोपयोग या ज्ञानोपयोग ऐसा चलता रहता है, वो ऑप्शनल है, किसी को होता भी है किसी को ज्ञानोपयोग भी चलता रहेगा। परंतु जो बिगिनिंग है, जो शुरुआत है प्रथमोक्षम सम्यक्त्व की, वो साकार ज्ञानोपयोग में ही होती। ऐसा जो जीव है, इतनी सारी कंडीशन अभी जो है, ऐसा जीव पांच लब्धि पूर्वक, अब पांच लब्धि के नाम कौन सुनाएगा, ना बोलो प्रतिभा ही बोलो, सोक्षम लब्धि विशुद्ध सब बोलो, सोक्षम लब्धि ये पांच लब्धि पूर्वक, पांच लब्धि पूर्वक ही प्रथमोक्षम सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। पांच भी कौन सी अभी हमने देखी, करण लब्धि। करण लब्धि में भी तीन भाग है, पहले अधप्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय बीत गया तो उसके पश्चात वाला उसको कहते अनंतर, अनंतर यानी इमीडिएट नेक्स्ट। तो उसके अनंतर समय में प्रथमोक्षम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती। पहले में पहले कंडीशन अभी बताए कौन कौन से, चारों गति वाला, भव्य, मिथ्या दृष्टि, संगी पंचेंद्रिय, पर्याप्त, गर्भज, मंद कषाय रूप विशुद्धता वाला, फिर जागृत, साकार उपयोग, साकार ज्ञान उपयोग वाला। ऐसा जीव पांच लब्धि पूर्वक, पांचवी करण लब्धि के जो अनिवृत्तिकरण है, उसके अनंतर समय में प्रथमोक्षम सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है। ये सारी, ये तो पात्रता उसकी है, कैसा प्राप्त करता है। अब इनमें जो बातें पात्रता के रूप में बताई है उन पर चर्चा करते हैं। अभी हमने की है फिर इसमें से दोबारा पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी जो हमने चर्चा की ना उसी की बात फिर हम पढ़ते हैं। मनुष्य तिर्यंच देव और नार की इन चारों ही गति वाले मिथ्या दृष्टि जीवों को, मिथ्या दृष्टि लिखा हूं, प्रथमोक्षण सम्यक तो हो सकता है परंतु प्रोवाइडेड किया कि भोगों को ही होगा अभव्य जीवों को नहीं। तुम कहोगे ऐसा अन्याय क्यों, अभव्य क्यों, उन पर ऐसा अन्याय क्यों, उनसे कौन से कर्म के कारण वे अभव्य है। इसका समाधान इस प्रकार है कि भव्यत्व और अभव्यत्व किसी कर्म के कारण नहीं होता, उसे जीव का पारिणामिक भाव कहा है, अर्थात इसमें किसी उनके प्रायोग्य लब्धि तक चार लब्धि तो हो सकती है परंतु करण लब्धि नहीं होगी और सम्यक्त्व भी कभी नहीं होगा। उनके शोषण लब्धि, विशुद्धि लब्धि, वेशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि तक होगी, वहां क्या क्या बातें बनती कर्मों में वो अभी हम देखने जा रहे हैं, वहां तक होगी परंतु आत्मसम्मुख परिणाम नहीं होगी उस जीव को, अभव्य में तो वैसी पात्रता ही नहीं है, इसलिए वो करण लब्धि मान लेगी नहीं, क्योंकि जो जो करण लब्धि शुरू होती है वो नियम से करण लब्धि के बाद प्रथमोक्षण सम्यक्त्व प्राप्त करता ही करता है, तो अभव्य तो करण लब्धि कभी नहीं मान लेगी। परंतु जो जीव भव्य है, जिनमें पात्रता है, वे भी जीव प्रायोग्य लब्धि तक आकर रुक जाते हैं। आत्मसम्मुख पुरुषार्थ जिनका नहीं होता है उनको भी यदि करण लब्धि प्रकट नहीं होती, यानी अपने शुद्धात्मा का वो विषय बनकर उसमें उनका उपयोग नहीं टिकता है, तो उनको भी करण लब्धि होकर आगे समय तो प्राप्त नहीं होगा। इसका अर्थ क्या होता है कि जो जीव भव्य है, भव्य का अर्थ उनमें पात्रता है, परंतु कितने ही जीव भव्य ऐसे है कि वो भी लंबे काल तक सम्यक्त प्राप्त नहीं करो, तो उनको कहते दूर भव्य। जो निकट काल में सम्यक्त प्राप्त करके मोक्ष जाएंगे उसको कहते आसन्न भव्य। बहुत लंबे काल तक सम्यक्त प्राप्त नहीं कर सकते तो उनको कहते दूर भव्य, अभी उनका काल बाकी है। और जो और अधिक काल के लिए उसको दूरानुदूर भव्य या अभव्य समभव्य, अभव्य समभव्य ऐसे ऐसे भव्य जीव होंगे तीन काल में कभी सम्यक्त प्राप्त नहीं कर सकते, अनंत काल तक, अनंत 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 है, कभी तीन काल में कभी सम्यक्त प्राप्त करने वाले ही नहीं है, वो हमेशा संसार में ही रहे। हमने ऐसा देखा है ना, नित्य निवृत्त का नाम सुना है तो क्या नित्य निवृत्त का कभी अभाव होगा, हमेशा कुछ जीव तो नित्य निवृत्त नहीं रहे। अब एक निवृत्त शरीर में अनंत जीव है ये तो हमें मालूम है, वो कितने अनंत है पता है, तीन काल के जितने सिद्ध है। अब ऐसा नियम है कि 6 महीने और 8 समय में 608 जीव नियम से मोक्ष जाते ही है, हर 6 महीने 8 समय, 6 महीने 8 समय, 6 महीने 8 समय, अनादिकाल से कितने सिद्ध हुए, अभी वर्तमान में हो रहे और भविष्य में भी अनंत काल आने वाला है उसमें भी इतने सिद्ध होंगे, तो ये जो सिद्ध राशि है तीन काल के सिद्धों की राशि, उससे भी एक निगोद शरीर में अनंत गुणा जीव होते, तीन काल के अनंत सिद्ध है और उनसे भी अनंत गुणा जीव एक निगोद शरीर में। अब वो भव्य होंगे कि अभव्य होंगे, भव्य अभव्य दोनों होंगे, यानी अनंतानंद जीव राशि निगोद नहीं पड़ी रहेगी जो भव्य। अब दूसरी बात का, जो निगोद में से तो निकले हैं और अन्य राशि में आ गए, एक अन्य एकेंद्रिया में या जो कोई इतर निगोद है कोई मनुष्य में पड़े, उसमें भी ऐसे कितने भव्य जीव है कि जो कभी सम्यक्त्व तो प्राप्त ही नहीं करेंगे, हमेशा संसार में ही रुकते रहेंगे, तो उसको कहते हैं अभव्य सम भव्य। क्योंकि बहुत लोगों को चिंता ऐसी होती है कि सभी जीव मोक्ष जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा, क्योंकि हम परोपकारी है ना, हमें तो दूसरों की चिंता करने की आदत है, क्योंकि किसी को अपनी चिंता नहीं होती। क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो घर में बुलाते हैं, चलो आज हमारे यहाँ आप बताना भोजन के लिए, तो क्यों आना, नहीं वो हमारे पतिराज है उनको जरा समझाना, या हमारा बच्चा है उसको जरा कुछ समझाना, उसको इस धर्म के लाइन पर लाना। तो हमारे अपनी चिंता नहीं होती है, हम तो समझ गए हैं, परंतु अभी जरा हमारे कुटुंबियों को समझाओ, ऐसे हर एक की इच्छा होती है। देखो ऐसा ऐसा राग होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो मार्ग हमें मिला है वो औरों को भी मिले ऐसी सहज भावना होना बात अलग है, परंतु उसी में अपने वो उपयोग लगाते रहे और वो नहीं सुने तो यहाँ कषाय की वृद्धि होती रहे, वो तो कुछ योग्य बात है। परिणाम तो होंगे, क्योंकि घर में हम कुछ हलवा बनाए, कुछ मिठाई बनाए तो सबको दे के फिर खाते हैं, तो ये तो बहुत बहुत ही अच्छी, यानी गौ का अभाव करने वाली बात हमें मिली है, तो हमें ऐसा लगता है कि सारे लोग इसको जाने, सारे लोग जाने। शुरू शुरू में ऐसा होता है, अपना स्वाद कम होता है और औरों को ही समझाने में हम लगे रहते। बात में ऐसे भाव आते हैं, परंतु उससे क्या, ये राग भाव है, ये भी शुभ भाव है, इससे कल्याण होने वाला नहीं अपना। तो ये हम कहां से बात नहीं रहे कि भव्य जीवों में पात्रता होती है, परंतु कितने ही भव्य ऐसे होंगे कि जो तीन साल में भी सिद्ध नहीं होंगे, तो उसको अभव्य संभव्य या दूरानुदूर भव्य थे। भव्य जीवों में पात्रता तो होती है, उनमें भी काल लब्धि आने पर भवितव्यतानुसार पुरुषार्थ से सम्यक होगा और उसमें देशना रूप निमित्त भी होगा। इसमें क्या क्या बताया है ये इस एक वाक्य में? हाँ, पांच समवाय बताए कि जीव में सम्यक तो होने के अभी भव्य लिया है ना, तो स्वभाव है, सम्यक तो प्रकट करने का स्वभाव है, उसे भव्य लिया है, तो उसमें काल लब्धि आने पर, काल लब्धि लिया तो काल लब्धि आने पर हो जाएगा ना, चलो अभी हम टीवी देखने बैठ जाएंगे, तो भवितव्यता अनुसार जो होने वाली जिस समय पर्याय है उस वही होगी, और कैसे होगी, पुरुषार्थ से होगी, तो पुरुषार्थ से सम्यक होगा, यानी सम्यक नाम की जो पर्याय है उस पर्याय में ये पांचों ही समवाय लगते हैं, स्वभाव काल लब्धि होनहार पुरुषार्थ तो लगे ही लगे, निमित्त भी होना, अभी हमने यह दूर का निमित्त लिया है कि देशना रूप निमित्त लिया है, उसकी चर्चा तो आगे आएगी, तो इस तरह से उसमें निमित्त भी होगा। अब मेरा ऐसा प्रश्न है कि कोई जीव है अब ये ऊपर जो पॉइंट दिखाया है वहां उसका मोक्ष है, और उसका भी एक पुद्गल परावर्तन का काल बाकी है मोक्ष होने के लिए, भव्य जीव है, संगीत पंचेंद्रिय है, ये अभी हमने कभी जो लायका करी ना सब बिल्कुल फिट है, परंतु उसका मोक्ष कब होने वाला है, एक पुद्गल परावर्तन के बाद उसको सम्यक होगा क्या, और हाँ? उसको पुरुषार्थ से होगा कि नहीं होगा, हाँ देखो ऐसा नियम है कि अर्ध सम्मिलित होने के बाद अर्ध उत्तर परावर्तन में नियम से मोक्ष जाएगा, अधिक से अधिक काल है, उत्कृष्ट काल, कोई जो ऐसा होता है कि सम्मिलित होता है उसी भाव में मोक्ष चला जाता है, ऐसे विजय होते हैं ना, जिस भाव में सम्मिलित हुआ उसी भाव में मोक्ष चले गए। आपने ऐसे कोई आपके पहचान वाले हैं? हाँ अरे पहचान वाले नहीं, प्रतिमान योग में ऐसी कोई स्टोरी पड़ी है? अरे भरत चक्रवर्ती तो पहले से वो सम्यक्ति था, भरत चक्रवर्ती के पुत्र, पुत्र पुत्र की बात बराबर, भरत चक्रवर्ती के पुत्र जन्म से दूंगे और निगोद से निकले थे, एक भाव बीच में किया था उन्होंने, कोई कोई जिनको निगोद से डायरेक्ट मनुष्य भाव में आके मोक्ष में जाते, पर्याय जरूरी नहीं है, त्रेसठ सलाका पुरुष नहीं हो सकते, निरोध से लेकर डायरेक्ट मनुष्य पर्याय हो जावे और मुसीब हो में मोक्ष चले जावे ऐसी योग्यता हो सकती। सूक्ष्म निरोध से निकला हुआ जीव भी मुनि अवस्था तक हो जा सकता है, और ये जो नित्य निरोध में से जो निकलता है ना बादल निरोध वाला जीव, वो मनुष्य होकर उसी भाव में मोक्ष चला जाता है। ये भरत चक्रवर्ती के जो पुत्र थे जन्म से गुण गए तो समरण में ले गए इतने 923 पुत्रों को, तो ऐसा आता है ना अपने पुत्र में कोई खामी है तो ऐसे विचार आता है कि यह क्या होगा इन जीवन, तो ऐसे महाराज ये पुत्र कब बोलेंगे, तो पुत्र बोले क्या कि हे भगवान हमें जिनेश्वरी दीक्षा दीजिए, और उन्होंने मुनिव्रत धारण कर सम्यक को प्राप्त किया, मुनिव्रत ग्रहण किया और वहां पर वो मोक्ष भी चले गए उसी भाव में, केवल ज्ञान प्रकट किया मोक्ष भी चले गए, यानी जिस भाव में सम्यक को प्राप्त किया उसी भाव में मोक्ष चले गए, है ना। तो ऐसे भी जीव हो सकते हैं, परंतु अधिक से अधिक काल कोई समझो सम्यक को प्राप्त हुआ कि मिथ्या तो नहीं जाए, फिर सम्यक तो होता रहे और जाता रहे, या बिल्कुल कोई मिथ्या तो नहीं पड़ा रहे, तो अधिक से अधिक कितने काल तक रहेगा, अर्धपुत्र परावर्तन काल, उसके पश्चात उसका यानी यहाँ पर मोक्ष होगा ही होगा, उससे अधिक वो काल संसार में नहीं रहेगा। तो सम्यक की प्राप्ति की योग्यता कब होगी, मोक्ष के पहले अर्धपुत्र परावर्तन काल, वो प्रथम योग्यता है सम्यक को प्राप्त करने। जरूरी नहीं सब जीव अर्धपुत्र परावर्तन काल पहले ही सम्यक को प्राप्त करे, हो सकता है कि मोक्ष अभी होना है और 10 साल पूर्व ही उसको सम्यक को प्राप्त हो और उसी 10 वर्ष में पूरा सारा ही पुरुषार्थ हो जाए, सम्यक भी होगा मुनि भी होगा, ये 10 वर्ष में बहुत हो गए, कुछ अंतर्मूर्त पहले भी उसको सम्यक हो सकता है, फिर वो प्रथमोक्षम सम्यक होगा, फिर उसमें से वो क्षोक्षम होगा या फिर गिरेगा, फिर क्षोक्षम होगा एक अंतर्मूर्त में और फिर क्षोक्षम में से क्षायिक होगा, फिर मुनि अवस्था भी धारण करेगा और श्रेणी भी चढ़ेगा और श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान भी प्राप्त करेगा, ऐसे हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, वह ऐसे होते हैं शिव को। तो यहाँ जो हम बात कर रहे थे कि भव्य जीवों में पात्रता होती है, परंतु सबसे पहले से पहले काल लब्धि कब आ सकती है, अर्धपुत्र परावर्तन काल पहले, मोक्ष होने से पहले किसी जीव को लंबे काल पहले जब आता है तो अर्धपुत्र परावर्तन से अधिक अधिक काल बाकी हो उसका मोक्ष का, तो उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा न। जो अर्धपुत्र परावर्तन काल में मोक्ष जाएंगे उनके सर्वप्रथम सम्यक्त्व प्राप्ति की योग्यता होगी, यानी इसके बाद जब भी उनको सम्यक्त्व होगा, जिन्हें उससे अधिक काल बाद मोक्ष होगा या जिन्हें अनंतानंत काल पश्चात भी मोक्ष नहीं होने वाला, ऐसे दूरानुदूर भोगों को सम्यक्त्व नहीं होगा। हमने कारण कार्य रहस्य पुस्तक में 5 संवायों की चर्चा की थी, सम्यक तो प्राप्ति में भी 5 समवाय होंगे ही, कोई भी पर्याय हो, पर्याय नहीं कार्य, जब जब कार्य होता है तो हरेक कार्य में 5 ही समवाय होते ही है और वो सहज रूप से होते हैं और जो होने वाले हैं वही होते हैं, वो हमने इच्छा से हम ला नहीं सकते या किसी को टाल नहीं सकते। मात्र काल लग्न आई है इसलिए पुरुषार्थ बिना ही सम्यक प्रकट होगा, यह बात संभव नहीं है। हमें ऐसा लगता है भगवान ने जब देखा है तब होने वाला है, तभी क्यों चिंता करें। तुम कहोगी कर्म को उकसाने का पुरुषार्थ करके तो सम्यक्त होगा ना, हमने भी कहा प्रथमोक्षम सम्यक्त होता है तब कर्मों का उक्षम होता है, तो प्रश्न क्या है, कर्मों का उपशम करने का पुरुषार्थ करके जीव को सम्यक तो होगा कि नहीं होगा, बोलो होना चाहिए ना, नहीं नहीं सब नहीं कहते। देखो व्यक्ति जीव का पुरुषार्थ जीव में अपने स्वयं में होता है, जिस द्रव्य का पुरुषार्थ, मैंने द्रव्य कहा जीव ने कहा, क्यों द्रव्य कहा, कुदरत में पुरुषार्थ होता होगा कि नहीं होता होगा? देखो कुदरत में पर्याय होती कि नहीं होती? छह द्रव्यों में प्रति समय कोई ना कोई पर्याय चलती है, तो उसमें पांच समय लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो कुदगल में जीव का पुरुषार्थ लगेगा क्या? कुदगल का द्रव्य का अपना अपना लगेगा, यानी स्वभाव पुरुषार्थ काल लव्य और गुणार्थ वो तो उसी द्रव्य की है, और निमित्त रूप से कोई परद्रव्य वहां होता है ना? तो निमित्त की तो परद्रव्य की पर्याय है, परंतु बाकी चार तो स्वद्रव्य में है। वो बोले कर्म का जो कोई चल रहा है अवस्था होती है, तो कर्म की अवस्था उसके अपने पांच समवाय से होती है, और जीव की अवस्था में उसके अपने पांच समवाय लगते हैं। उसमें से चार तो स्वद्रव्य रूप होते हैं और निमित्त एक परद्रव्य रूप रहता है। किसी भी द्रव्य की कोई भी पर्याय अन्य द्रव्य ला नहीं सकता, पलटा नहीं सकता, नष्ट भी नहीं कर सकता। प्रथमोक्षण समय तो होने के पहले तथा पश्चात कर्मों में तथा नवीन होने वाले कर्मबंध में अनेक स्थित्यंतर यानी अवस्थान्तर होते हैं, यानी जो ऑलरेडी सत्ता में पड़े हैं कर्म उनमें भी बहुत सी अवस्थाएं पलटती, और जो नया बंध हो रहा है अभी उसमें भी बहुत सारे वेरिएशन, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस यानी बहुत सारे उसमें अवस्थान्तर होते हैं। अन्य अन्य प्रकार से बंध भी कैसे बनता जाता है। कर्म की ये सब अवस्थाएं कर्म में उनकी स्वयं की योग्यता से होती है। जीव केवल तत्व विचार और तत्व निर्णय करता है, यही पुरुषार्थ है। तत्व विचार करते हुए कर्म के उपशमादि स्वयं हो जाते हैं, यानी जीव क्या करता है? मात्र तत्व विचार करता है, और वो कर्मों में जो कुछ उपशम शोषम जो कुछ होना है वो उसकी स्वयं की योग्यता से होता है। यानी कर्णानियोग द्वारा जब हम कर्म की बातें सीखते हैं तो उसके सीख कर उसके अनुसार कोई पुरुषार्थ नहीं होता, ये बात ख्याल में रखना। कर्म की अवस्थाओं का ज्ञान हम करेंगे, परंतु जो पुरुषार्थ है वो तो कर्णानियोग का तो ज्ञान कराया जाता है, निमित्त का तो ज्ञान होगा, कर्मों में क्या क्या अवस्थाएं बनती उसका ज्ञान होगा, परंतु अभी हमको कर्म को उपशमाना है कि क्षय करना है ये तो यथा योग्य अपनी योग्यता से बन जाते हैं। हमें कितने ऐसे पहले भी प्रश्न आए हैं कि मुनिराज को पता है कि उपशम श्रेणी से मोक्ष नहीं मिलता, तो उपशम श्रेणी क्यों मानते हैं? अरे हम देवराज राजा में गए थे, वहां ऐसे ही प्रश्न होना किसी को था कि उपशम श्रेणी मानते क्यों है? तो ये तो सहज कर्मों में ऐसी अवस्थाएं बन जाती है, और उसमें भी निमित्त रूप से बहुत अनेक बातें भी रहती है कि जिसने पहले आयु ही बांधी है और उसका अगला भाव एक निश्चित है, वो तो शपक श्रेणी मान लेगा कैसा? शपक श्रेणी मान ले तो मोक्ष हो जाएगा। अभी जिसका उत्कृष्ट उत्तम सहनन नहीं वज्रेश्वर नारायण सहनन, और तो वो तो उपक्षम श्रेणी का पुरुषार्थ कर सकता है, शपक श्रेणी का पुरुषार्थ उसके होता नहीं। और भी बहुत ऐसे नियम है कि उससे तो पता चलता है, और वहां भी पूर्ण विक्रांत होने का पुरुषार्थ किया। उपशम श्रेणी की जब जब बात आती है, अख्यात अवस्था में हम क्या कहते बिचारे ग्यारह गुणस्थान से गिर पड़े बिचारे, पूर्ण विक्रांतता जिसने प्राप्त की है, अरिहंत जितनी विक्रांतता। अब हमने यहाँ निर्जरा का प्रकरण जो हमारा हुआ नहीं, गुणश्रेणी का वगैरह भी होने वाला है, तो श्रेणी चढ़ते समय भी सभी कर्मों की निर्जरा होती रहेगी, ग्यारह गुणस्थान तक जाके उतरते हुए भी कर्मों की बहुत सारी निर्जरा होती है। यानी एक बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरता है तो जीव को तो बिल्कुल हल्का हो जाता है, इतने इतने कर्मों की उसकी निर्जरा होती है। नीचे की तो चौथे पांचवें छठे सातवें में होती है, परंतु श्रेणी में विशेष पुरुषार्थ होता है, और कर्मों की असंख्यात गुणा निर्जरा होती है, और वे सहज रूप से होता है। जीव तो अपने में मस्त है, वो तो आनंद का अनुभव कर रहा है, कर्मों में ऐसी बातें बनती है। उपशम श्रेणी चलता है फिर उतरता है, तो फिर शपक श्रेणी चलेता है, या कोई नहीं भी चले फिर भी वो उसका पुरुषार्थ भी है, यानी उसकी हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं।
पुरुषार्थ करना निर्विघ्न कार्य
जिसकी जरूरत है योग्यता होते
हाँ
योग्यता भी होती है जी हाँ। देखो अभी हम संघ पंचम किए हैं, उपदेश मिला है, अभी वो तत्वों का विचार करना या गर्भवती का विचार करना, योग्यता तो हमें दोनों की है। हाँ अभी जिसकी योग्यता है, जिसकी अभी होनहार के ऊपर से लाएंगे उसको, तो उसमें उसकी तत्व विचार की योग्यता है तो तत्व विचार आएंगे। और जिसको अभी ढूंढना है संसार में, अभी जिसके भोग आती है, जिसको इसी में आनंद आ रहा है, तो उसको दूसरे विचार आएंगे। ये तो सारा सहज है, ये करना वगैरह तो उपदेश की भाषा होती है, क्योंकि अभी समय तो होने की लंबी अभी 10 साल बाकी है, और अभी हम चलो प्रसाद करो, समय को प्राप्त करो, चलो तत्व विचार करो, तत्व विचार करने बैठिए, और विचार कहें कहे के आते हैं। अभी बहन का उसमें था ना किसी का कि वो तत्व विचार करने लगे और दूसरे विचार बीच बीच में टपकते, हम नहीं चाहते फिर भी टपकते हैं। क्यों टपकते हैं? क्योंकि अभी कहीं ना कहीं उपयोग अन्यत्र लगता है, इसका अर्थ अभी उपयोग ने रुचि कही अन्य पड़ी है, इसलिए उपयोग अपने में नहीं दिखता है, यानी तत्व विचार में भी नहीं लगता। इसकी तो चर्चा अभी आगे जो है ना, देशना लगी प्राय लगी हुई, इसकी अधिक चर्चा होगी, इसलिए लिखा है सर। तो जीव तो केवल तत्व विचार और तत्व निर्णय करता है, यही पुरुषार्थ है। तत्व विचार करते हुए कर्म के उक्षमादि स्वयं हो जाते हैं, जीव को कर्म में कुछ करना नहीं पड़ता, वह कुछ कर ही नहीं सकता। ये मूल बात, कर्म में जीव का कुछ नहीं चलता है, कर्म तो परद्रव्य है, वो अपनी 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 योग्यता से जो कुछ उसमें अवस्थान पर होते हैं उसके स्वयं की योग्यता से होते हैं, परंतु जब जब जीव तत्व पर विचार करता है तब तब वे कर्मों में ऐसी अवस्थाएं बनती है, और तत्व विचार करना यही एकमात्र पुरुषार्थ है, और कोई भी पुरुषार्थ है नहीं। इस तरह हमने देखा कि चारों गति वाले भव्य मिथ्या दृष्टि को प्रथमोक्षम सम्यक तो होगा। जरा गौर करना, हमने मिथ्या दृष्टि को कहा, सम्यक दृष्टि को नहीं। प्रथमोक्षम सम्यक की बात चल रही, क्योंकि क्षोक्षम सम्यक तो उक्षम सम्यक दृष्टि को होता है, एंड जिसको औक्षमिक सम्यक है उसके पश्चात उसको क्षोक्षम सम्यक तो होगा, अर्थात प्रथमोक्षम सम्यक तो पूर्व क्षोक्षम सम्यक तो होता है, और क्षोक्षम सम्यक तो पूर्व शायिक सम्यक तो होता है, द्वितीयोक्षम सम्यक तो भी क्षोक्षम सम्यक तो पूर्वक होता है। हमने देखा था ना मीरा श्रेणी चढ़ने के पहले जो क्षोक्षम सम्यक दृष्टि है वो दोबारा उक्षम करते हैं तो द्वितीयोक्षम सम्यक तो होता है, यानी वो सम्यक तो में से ही सम्यक रहे, और यहाँ प्रथमोक्षम सम्यक वाला मिथ्यांत में से सम्यक ही होता है। इसलिए प्रथमोक्षम सम्यक को प्रकट करने का कार्य मिथ्यादृष्टि जीव ही करेगा। चारों गति वाले जीवों में संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों को ही प्रथमोक्षम सम्यक होगा, असंगी जीवों को नहीं, अपर्याप्तों को भी नहीं। पर्याप्त और अपर्याप्त की चर्चा हमने कर्णान योग परिचय में विस्तार से की थी। जिसकी पर्याप्ति पूर्ण होती है उसे पर्याप्त जीव कहते हैं, इसकी हमने चर्चा की थी ना, विनाम कर्म के प्रकरण में उसकी चर्चा की। उसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय पाया जाता है, और जिसकी एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती उसके पूर्व ही श्वास के 18वें भाग में जीव मरण को प्राप्त होता है उसे अपर्याप्त कहते हैं। उसको अपर्याप्त नाम कर्म का उदय पाया जाता है, एंड उसको लब्धि अपर्याप्त, लब्धि प्लस अपर्याप्त, लब्धि पर्याप्त ऐसा भी कहते हैं, अथवा क्षुद्र भव वाले जीव कहते हैं। क्षुद्र भव है ना, छोटा भव है, बिल्कुल अल्प आयु है, तो क्षुद्र भव वाले जीव कहेंगे, यानी उनका
लाइफ स्पैन इतना अल्प होता है। देव नारकी और मनुष्य तो नियम से संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं। रह गया हाँ खा डाला कुछ पर्याप्त जीवों में भी जब तक दूसरी शरीर पर्याप्त पूर्ण नहीं होती तब तक उन्हें निर्वृत्ति अपर्याप्त कहते। ये अपर्याप्त के प्रकरण में हमने देखा था कि छह पर्याप्त एक साथ शुरू होती है और क्रम से एक एक पूरी होती है। पहले अपर आहार पर्याप्त पूर्ण होगी, बाद में शरीर पर्याप्त पूर्ण होगी, बाद में वो इंद्रिय पर्याप्त पूर्ण होगी। तो जब शरीर पर्याप्त पूर्ण हो जाएगी तब से उनको पर्याप्त कहेंगे। उसके पहले उन जीवों को निर्वृत्ति अपर्याप्त कहेंगे। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर पर्याप्त कहलाते हैं। यानी ये जो चारों गति वाले जीव है जो पर्याप्त होने वाले हैं वो स्टार्टिंग में क्या है निवृत्ति अपर्याप्त होते हैं और बाद में वही जीव पर्याप्त हो जाते हैं। नियम से सभी पर्याप्ति पूर्ण होने तक उनका मरण नहीं होता। पर्याप्त जो जीव है जिनके पर्याप्त नामकरणों का उदय चल रहा है उनकी पर्याप्ति तो पूर्ण होने वाली है तो उसके पहले वो मरेगी ही नहीं। पर्याप्ति पूर्ण होने के पश्चात हो सकता है कि अंतर्मुर्त में भी मर जाए परंतु पर्याप्ति जब तक पूर्ण होती है अब जब तक वो चल रहा है तब तक उनका मरण नहीं होगा। किसके लिए पर्याप्ति के लिए सभी पर्याप्ति मिलकर भी अंतर्मुर्त काल होता है और एक एक पर्याप्ति के लिए भी अंतर्मुर्त। अंतर्मुर्त के भेद बहुत है। अंतर्मुर्त यानी मूर्त से छोटा। मूर्त कहते हैं दो घड़ी को 24 मिनट की एक घड़ी और 48 मिनट की दो घड़ी यानी एक मूर्त होता है। उसमें एक समय कम उसको हम बड़ा से बड़ा अंतर्मुर्त कहते हैं और छोटे से छोटा अंतर्मुर्त कितना है आवली प्लस एक समय। एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। अभी उसमें एक समय और बढ़ा लो तो वो हो गया अंतर्मुर्त। मूर्त के अंदर है ना उसमें और एक समय बढ़ा दो वो भी अंतर्मुर्त। उसमें एक एक समय बढ़ाते रहो वो सारे अंतर्मुर्त। दो आवली होगी वो भी अंतर्मुर्त। दो आवली प्लस एक समय वो भी अंतर्मुर्त। अभी ऐसे बढ़ाते रहो एक सेकंड में सैकड़ों आवली होगी यानी एक सेकंड को भी हम अंतर्मुर्त हैं। दो सेकंड को भी अंतर्मुर्त हैं। 10 सेकंड को भी जो कुछ चेता हो गया यानी 48 मिनट में एक समय कम वहां तक ये सारे अंतर्मुर्त को दे रहे हैं। तो ये अंतर्मुर्त भी असंख्यात होंगे एक आवली से लेकर एक एक समय बढ़ते हुए सबका नाम क्या है अंतर्मुर्त। अब ये कौन सा अंतर्मुर्त है तो यथा योग्य अंतर्मुर्त। हमने उक्षण श्रेणी का हिसाब किया था ये लब्धिचार क्षणाचार के अनुसार तो कुछ सेकंडों का काम है पूरा श्रेणी चल के उतर जाता है वो हमें लगता है 48 मिनट तक अंतरंग में स्थिर है ऐसा कुछ नहीं। पूरा श्रेणी का कार्य भी कुछ सेकंडों में हो जाता है। आठ समय का हो ही नहीं सकता। एक आवली में जगन्य युक्ता संख्या कितने समय होते हैं। अब ये जगन्य युक्ता संख्या क्या है तो सबसे छोटे में छोटा असंख्या जो है उसको कहते हैं जगन्य परिता संख्या। सुनो तो जगन्य परिता संख्या से जगन्य युक्ता संख्या कैसे निकालना तो जगन्य परिता संख्या जो संख्या है अब ये अपने विषय निकाला है तो जरा समय हो गया अभी दो मिनट में बताते हैं। किसी संख्या को विरलन करना है उसको बिखेर देना जिसे चार संख्या है उसको एक एक में डिवाइड करेंगे तो एक 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 चार बार लिखेंगे हम और हर एक के ऊपर चार 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 संख्या लिखेंगे और आपस में गुना करेंगे चार गुना चार गुना चार गुना चार। ये जो ऐसी संख्या निकलती है वैसे जो सबसे छोटा संख्या है इसको जगन्य परिता संख्या कहते हैं उसको पहले बिखेर दो एक 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 पूरा अलग करो और हर एक एक के ऊपर जगन्य परिता संख्या जगन्य परिता संख्या जगन्य परिता संख्या जगन्य परिता संख्या लिख दो आपस में गुणा करो। जगन एक बार असंख्यात से गुणा करेंगे तो असंख्यात गुणा असंख्यात यानी स्क्वायर हो जाएगा। अब उसको इतनी बार यानी जगन्य परिता रेस टू जगन्य परिता संख्या, ये जिसको रेस टू जो जानते हो वो समझ जाना, इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी तब वो जगन्य युक्ता संख्या होता है और इतने समय एक आवली में होते हैं। तो आठ समयों का तो एक अंतर्मुख कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, जो जिन्हें मैं भगवान ने नहीं देखा, ये अंतर्मूर्त छोटे में छोटा अंतर्मूर्त आवली प्लस एक समय और बड़े में बड़ा अंतर्मूर्त 48 मिनट में एक समय कम। बीच वाले जो अंतर्मूर्त यथा योग्य जो केवल ज्ञानी नहीं जाने हैं, जहां जहां अंतर्मूर्त की बात आती है तो वहां अंतर्मूर्त इतना ही लिखा होता है, उसको मिनटों में या सेकंडों में नहीं गिनाते। हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं ये अपनी भाषा में समझाने के लिए, परंतु वो सही है नहीं है। हम अंतर्मन की बात रखेंगे क्योंकि जो आगम में भाषा है उसी भाषा में हमें वो कायम रखना है। तो ये भी हम बाकी तो भी चालू रखेंगे, 8:15 बजे फिर मिलते हैं। बोलो अरनाथ भगवान की।